Dear brothers and sisters, we welcome you to
भाई और बहनों, हम आपको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के 184th आदर्श अर्धवार्षिक महासम्मेलन के दूसरे सभा में। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कहा कि मैं संचालन करूं। हम सभी लोगों को यहां उपस्थित है या जो लोग अन्य साधनों जैसे टीवी, रेडियो या इंटरनेट के द्वारा यहाँ है, को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो दुनिया भर के विभिन्न स्टेक केंद्रों में सैटेलाइट द्वारा संचालन को देख रहे हैं। हम उन महाअधिकारियों और महाअफसरों का आभार व्यक्त करते हैं जो सम्मेलन में हमारे साथ शामिल है। इस सभा का संगीत ग्रैंड्सविल, स्टेन्सबेरी पार्क और टुएला यूटा क्षेत्रों के संगठित गायक मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा हॉली बेवन के निर्देशन में, और ऑर्गन पर साथ रहेंगे लिंडा मगेल्स। गायक मंडली इस सभा का शुरुआत करेगी अराइज ओ गॉड एंड शाइन गाकर। प्रार्थना एल्डर विल्फ्रेड डब्ल्यू एंडरसन, जो 70 के है, द्वारा दिया जाएगा। प्रधान हेनरी बी आयरिंग, जो प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार है, बाद में गिरजाघर के महाअफसरों और क्षेत्र सत्रों को प्रस्तुत करेंगे समर्थन वोट के लिए।
Dear Heavenly Father, as we begin this session of General Conference, we bow our heads in gratitude here in the conference.
Hey, हमारे स्वर्ग पिता हम आभारी हैं और आपके और दुनिया भर में जितने घरों पे ये आपकी आशीष है हम आपको आपको धन्यवाद देते हैं आपके पिता के प्राश्चित के लिए और हम आपके विश्वास को धन्यवाद देते हैं जो हमें मिलता है और धन्यवाद देते हैं सुसमाचार के फिर से पुनर्स्थापित हुआ है और धन्यवाद देते हैं हमारे भविष्यता थॉमस स्पॉन्सन के लिए और हम उससे प्यार करते हैं और उसको सस्टेन करते हैं और उसके साथ हो पिता और जैसे सारे लोगों इस कॉन्फ्रेंस में आए और अपने दिलों में सवालों को लेकर और प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा उनको दें कि उनको शांति मिले ताकि उनको सवालों का जवाब मिले और उनके उनको राह दिखाए ताकि सभी यीशु मसीह के नाम से आमीन
It is proposed.
ये प्रस्तावित किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के भविष्यवक्ता पैगंबर और पवित्र प्रकटीकर्ता और प्रधान के रूप में समर्थन करें हेनरी बेनियन आयरिंग को प्रथम अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार और डीटा फ्रेडरिक उगडोव को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार के रूप में जो सहमत है वो प्रकट करें जो असहमत है अगर कोई तो प्रकट करे प्रस्तावित किया गया जाता है कि हम बोयत केनेथ पैकर को 12 देवदूतों को परिषद के प्रधान के रूप में समर्थन करें और इन्हें परिषद के सदस्यों के रूप में बोयत के पैकर एल टॉम पेरी रसल एम नेल्सन डेलन एच ओक्स एम रसल बैलन रिचर्ड जी स्कॉट रॉबर्ट डी हेल्स जेफरी आर हॉलैंड David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, or Neil L. Anderson. जो सहमत है कृपया प्रकट करें जो असहमत है उसी तरह दिखलाइए यह प्रस्तावित किया गया है कि हम प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों और 12 देवदूतों को भविष्यवक्ताओं पैगंबरों और प्रकटीकारों के रूप में समर्थन करें जो सहमत है कृपया प्रकट करें जो असहमत है अगर कोई उसी तरह से प्रकट करे प्रस्तावित किया गया है कि हम एल्डर्स कार्लोस एच अमाडो और विलियम आर वाकर जो सत्रों के पहले परिषद के सदस्य हैं को मुक्त करते हैं और उनके महान सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं और उन्हें सामान्य महाअधिकारियों नियुक्त करते हैं जो हमारे साथ उनके बातें भक्ति भर सेवा के लिए आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं कृपया प्रकट करें एल्डर आर्यक पी मिनाशन और वीडो शंकन्स को क्षेत्रीय संतरों से मुक्त किया गया है यह प्रस्तावित किया गया है कि हम उनके महान सेवा के लिए धन्यवाद दें कि मत करो जो सहमत है यह प्रस्तावित किया गया है कि हम अन्य महाअधिकारियों क्षेत्रीय संतरों और महा सहायक अधीक्षकों को समर्थन करें जैसे वर्तमान समय वो नियुक्त है जो सब सहमत करें कृपया प्रकट करें जो कोई असहमत है तो प्रकट करें धन्यवाद भाई और बहनों हमारे लिए तुम्हारे विश्वास और प्रार्थना के लिए
The choir will now favor us with I know that my Redeemer lives.
गायक मंडली अब हमें सुनाएंगे I know my Redeemer lives. संगीत के बाद हम एल्डर डेलन एच ओक्स और नील एल एंडरसन को सुनेंगे जो 12 देवदूतों को का परिषद के है उनके बाद भाई थेड आर कैलस्टर जो रविवार काशक है महाअक्षक है को सुनेंगे
In the concluding days,
उसके मरणशील देखरेख के अंतिम दिनों में यीशु ने अपने चेलों को वा दिया जिसे वह एक नया आज्ञा बतलाया तीन बार दोहराया वह आज्ञा सरल था परंतु मुश्किल जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो एक दूसरे से प्रेम रखने का शिक्षण उद्धारकर्ता के देखरेख का मुख्य शिक्षक था दूसरा महान आज्ञा था तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख यीशु ने यह भी सिखलाया अपने विरोधियों से प्रेम रख परंतु दूसरों से प्रेम को रख जैसे उसने अपने भेड़ को से किया उसके चेलों का हमारे लिए एक चुनौती महान था सही में प्रधान मोनसन ने हमें पिछले अप्रैल में सिखलाया था वास्तव में प्रेम सुसमाचार का मूल वस्तु है और यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता है उनका जीवन प्रेम का विरासत था क्योंकि इतना मुश्किल है यीशु की तरह दूसरों से प्रेम रखना करना यह मुश्किल है क्योंकि हमें उन लोगों के बीच रहते हैं जी जो हमारे विश्वास और मूल्य से वादों के नहीं जानते हैं उसका सभी के लिए महान प्रार्थना में उसका सूली चढ़ना से पहले यीशु ने अपने चेलों से ये प्रार्थना किया मैंने तेरा वचन उनसे पुचार दिया है और संसार ने उनसे बयार किया क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसा भी संसार नहीं फिर पिता ने उसने गुजारिश किया मैं ये विनती नहीं करता हूँ कि उन्हें जगत से उठा ले परंतु या कि उन्हें सब दुष से बचाए हमें दुनिया में रहना है परंतु दुनिया का बने नहीं हमें दुनिया में रहना है क्योंकि जैसा यीशु ने कहानी में बतलाया है उसका राज्य खमीर की तरह है जो इसका कार्य है कि दुनिया को अपने प्रभाव से आगे बढ़ाए उसके चेलों वा नहीं कर सके अगर वे सिर्फ उनके साथ रहेंगे जो उनके विश्वासी और कार्य को रखते हैं यदि मुझे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो सुषमाचार में कई शिक्षण है वादों को रखने का जबकि दूसरे विश्वास और कार्य के लोगों के साथ का जब पूर्ण जीवित यीशु ने नीफाइट्स को बपतिस्मा के कार्य को जगेती झगड़ते हुए देखा उसने साफ तरीके से बतलाया फिर अपने महान सिद्धांत को सिखलाया और जिस प्रकार तुम में भेदभाव होता रहा है वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई वाद विवाद का भावना रखता है वह मेरा नहीं परंतु उस शैतान का है जो कि कला का जन्मदाता है और वो लोगों के हृदय को एक दूसरे से लड़ने में बहकाता है सुनो यह मेरा सिद्धांत है एक ऐसा बातों को दूर करना उद्धारकर्ता ने भेदभाव के खिलाफ अपने चुनौतियों का अंत नहीं किया था उनके लिए जो बपतिस्मा के आज्ञा का पालन नहीं करते थे वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था वो भी जो आज्ञाओं का पालन करते हैं वो लोगों के हृदय को एक दूसरे से लड़ने के लिए भकाता है हालांकि जन्मदाता है शैतान का उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार है इसी तरह बाइबल की सिखलाता है बुद्धिमान लोग क्रोध को धन करते हैं
In modern revelation the Lord commanded that
अभी परमेश्वर ने सिखलाया है कि पुनर्स्थापित सुसमाचार के खुशी की वाणी को बतलाना चाहिए सभी आदमी को अपने पड़ोसी के संग दया और विनम्रता के साथ नम्रता के साथ विरोधी के साथ झगड़ना नहीं करके जैसे हम दया दिखलाते हैं और भेदभाव नहीं करते हमें हमारे सच्चाई जो हम जानते हैं को भुलाना या कम नहीं करना चाहिए हमें अपने स्थान या हमारे मूल्य को कम नहीं करना है यीशु मसीह के सुसमाचार और विधाएं जो हमने बनाए हैं हमें अंत के सच्चाई और झूठ के बीच के चेतावनी के कार्य को जाने में मदद करता है। उस चुनौती में कोई ना अच्छा बुरा नहीं होता। उद्धारकर्ता ने रास्ता दिखलाया जब उसके विरोधियों ने उसे उस महिला के सामने लाया जो बेचार करते पकड़ी गई थी। वे अपने खुद के छल से शर्मिंदा थे। वे दोष लगाने वाले चले गए और यीशु को उस महिला के साथ दिखलाया। उसने उसके साथ दया दिखलाया, ना कि उस समय उसको कुछ कहा, परंतु उसने उससे और फिर पाप ना कर। दयालुता से प्रेम की जरूरत है, परंतु मसीह के पीछे चलने वाला स्वामी की तरह हमेशा सच्चाई में रहेंगे। उद्धारकर्ता की तरह उसके चेले पाप के व्यवहार से कभी कभी सामना करेंगे और आज उन्हें कभी कभी पशुपाती या कत्तर की भी कहा जाएगा और गलत का बचाव करेंगे जैसे वे जानते हैं। कई दुनिया भर के मूल्य और कार्य में अंतिम दिनों संतों के ऐसे चुनौती को दिखला पड़ेंगे। इनमें आज बहुत ज़्यादा है जो एक ही लिंग का शादी को करना यूनाइटेड स्टेट्स के कई स्टेट्स और कई दुनिया के देशों में भी है। हम में कुछ है जो शादी में विश्वास नहीं करते, कुछ बच्चे जो नई पैदे करते हैं, कुछ अश्लील चित्र या खतरनाक निश्चिले प्रदान पर प्रभी करते हैं। दूसरा उदाहरण है कई विश्वासी जो पाता है कि विश्वास ना करते वाले पति या पवित्र के सदस्य या विश्वास ना करने वाले समर्थन स्थान पर जैसे मंदिरों, भक्ति करने वाले घरों और हमारे घरों में हमें सच्चाई और आज्ञाओं का साथ और सही तरीके से बतलाना चाहिए, जैसे हम पुनस्थापित सुसमाचार में पाए हुए मुक्ति की योजना में सीखते हैं। हमें वह करना चुनाव में, बोली में और जाति में कहानी तौर से सही है। जनता में जो जाति के लोग कहते और करते हैं में दूसरी महत्व रहता है। जाति के मुफ्त का इस्तेमाल कई जनता के कार्य में होता है, परंतु वह एक उन जरूरी चीज़ों पर लागू होता है दूसरों को विश्वास और कार्यों को करने में। कानून चलानन पर प्रबंधि लगा सकते हैं जो गलत या अच्छा ना हो, जैसे योग्य उपयान में कम होना चाहिए और मोमन की धर्मशास्त्र के भविष्यवक्ता द्वारा कानून किया गया होता है। जानकी की आवाज, जनता की आवाज, जनता के भाषाओं में हम सुसमाचार के शिक्षणों पर ज्यादा महत्व देते हैं कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और भेदभाव से बचो। मसीह के चेलों निमरता के उद्धारकर्ता रहते हैं। हमें सभी लोगों को प्रेम करना है, अच्छा सुने वालों को होना है वाला होना है और उनके सच्चे विश्वास पर चिंता करने वाला होना चाहिए। भले ही तुम सहमत ना हो, हमें झगड़ालू नहीं होना है चाहिए। हमारे खतरीली शिक्षक में हमारे पदवी और वर्तलाब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पदवियों को समझाने और खोजने में और दूसरों पर भरवाव देने के लिए ईमानदार रहना चाहिए। यह करने से हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे जाति के से सच्चे विश्वास और हमारे जाति से के मुफ्त हो जाए। हम चाहते हैं कि हम उसी उद्धारकर्ता के जरूरी नियम पर चले। इस कारण हम जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ रह करते रहे। जब हमारे स्तर गिर जाते हैं, हमें बुरे परिणाम को इज्जत से स्वीकार करना चाहिए, भले ही कुछ हो। हमें सभी संघ के संग अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैंने महासिद्धांतों पर बातें किया है। अब मैं उस पर बातें करूंगा जहां उस सिद्धांतों को उधारकर्ता के शिक्षणों में विश्वासी होकर कई जाने माने चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मैं शुरुआत अपने जवान बच्चों के सीखे हुए खेलों में से करता हूं। यहाँ पर यूटा में कई बार जो मोमन नहीं हो है को हमारे कुछ सदस्य द्वारा पसंद अलग किया जाता है, जो अपने बच्चों को से दूसरे जाति से बिताते हैं नहीं रहने देते। सही में हम अपने बच्चों को बर्ताव के मूल्य और स्तर को सिखलाते जाते हैं बिना ही उनके दूर दूसरे को इज्जत करने के। कई गिरजाघर और स्कूल के शिक्षण को युवा LDS युवा भी कि एक दूसरे से संघ के युवर को देखकर दुखी होते हैं। एक दूसरे से प्रेम करना करने का आज्ञा में दूसरे जातियों के बीच में और इज्जत शामिल और दूसरे जातियों परंपरा या लाभदायक पद है। हम सभी युग को चुनौती डरते हैं कि बदमाशी अंदर या भाषा मत करो। ये सभी उधारकर्ता के आज्ञा को एक दूसरे से प्रेम करने को रोकते हैं। उधारकर्ता ने सिखलाया है कि भेदभाव विरुद्ध का औजार है या कुछ राजनीतिक अभी भी भाषा और कार्यों के खिलाफ सिखलाती है। उन नीति और लोगों के साथ करना तो जो तुम्हारे विश्वास से अलग है राजनीति में जरूरी है, परंतु दूसरे नीतियों के कारण वैधिकत झगड़े शामिल नहीं होना चाहिए। हम सबको नफरत भरे वार्तालाप को छोड़ देना चाहिए और दूसरे सुझाव को इज्जत में मानने। सबसे ज़रूरी भेदभाव छोड़ना और हमारे घरों और परिवार निदारी में दूसरे के लिए इज्जत करना है। भेदभाव आवश्यक है। कुछ भेदभाव छोटे और कुछ बड़े होंगे। ज़रूरी भेदभाव में समझो कि परिवार का एक सदस्य दूसरे को बिना शादी के यो संबंध रखता है या दो जरूरी मूल्य को लड़ाई में डालता है और हमारे प्रेम परिवार के सदस्य को लिए हमें आज्ञा को निभाने के लिए। उधारकर्ता के उदाहरण से हम प्रेम से दयालुता को दिखला सकते हैं और सच्चाई में स्थिर रख सकते हैं। मैं एक परिवार के रिश्तेदारी के उदाहरण से ख़त्म करता हूँ। लगभग 10 साल पहले मिडवेस्ट के एक साथ सम्मेलन में मैं एक बहन से मिला जिसने मुझसे अपने घर सदस्य पति को उसके 7 सालों से गिरजाघर आते हुए के बारे में बतलाया मगर गिरजाघर के सदस्य नहीं बना। मैं क्या कर सकती हूँ, उसने पूछा। मैंने उससे सलाह दिया कि सच्ची अच्छी चीज़ों के कार्य और अपने पति के साथ शांति और दयालुता से रहे। लगभग 1 महीने बाद उसने मेरे पास तरह से लिखा, अच्छा मैं छोटी हूँ कि 12 साल तक पता चला कि मैं कितनी शांति थी, परंतु मुझे नहीं पता चला था मैंने उसको लेकर बहुत शांति थी। तो मैंने 1 महीने से ज़्यादा बहुत ही कठिन तरीके से दिया और उसने बपतिस्मा लिया। देवता सिखलाती है, खासकर परिवार को बनाने में। उसके पत्र में आगे मैं अब ज़्यादा दयालुपन को करने की कोशिश कर रहता हूँ। 6 साल बाद उसने फिर एक पत्र लिखा, मेरे पति को अभी बिशप की नियुक्ति मिली है और हमारे वादा आशीर्वाद प्राप्त हुई है। जीवन के कई रिश्तेदारी और कार्य में हमें ज़रूरी है कि हम अपने भेदभाव के लोगों के साथ रहे, जहां मुख्य है कि इनके हमारी ओर से भेदभाव नहीं होना चाहिए या भूल जाना चाहिए, परंतु मसीह के चेलों के दूसरों के साथ शांति से जीवन को बिताने को सिखाना चाहिए जो अपने मूल्य को नहीं बताते। पिता का मुक्त की योजना तो हम भविष्यवक्ता के प्रतिकरण द्वारा जानते हैं ने हमें मरणशील अवस्था में रखता है। उसके आज्ञाओं का पालन करें जिसमें शामिल है हमारे भेदभाव वाले पड़ोसियों के परंपरा और विश्वासी के प्रेम रखना। जिस तरह मार्मन के भविष्यवक्ता ने सिखलाया है हमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए परमेश्वर और सभी मनुष्य के प्रेम रखते हुए। हमारे इर्द गिर्द के मुस्बतों में जीना बहुत मुश्किल है। हमारे उद्धारकर्ता आज्ञा एक दूसरे से प्रेम करने जैसे उसने हमसे किया है सबसे बड़ी चुनौती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इसे समझें, और ये सब हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन।
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17,
जब भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ 17 के उम्र के थे, एक देवदूत ने जोसेफ से पहले भेंट किया और उसके नाम से पुकारा और उससे कहा कि वो मोरनाए एक संभावतिक है जो परमेश्वर की उपस्थिति से आया है, और कहा कि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ काम दिया है। कल्पना कीजिए जोसेफ ने क्या सोचा होगा जब देवदूत ने उससे बताया कि संसार के हर एक देश में जाति और भाषा के लोग उन्हें भला बुरा कहेंगे। शायद जोसेफ के आंखों के अचंभो देख मुरनाई ने दोबारा की संसार के सभी लोग उसे भूला भरा करेंगे। जोसेफ के बारे में अच्छा कहा आहिस्ता से आया, बुरी कहावत तुरंत शुरू हुआ। जोसेफ ने लिखा, कितना निराला है कि एक गुनाम लड़का को लगाया समझ गया कि वो सबसे खड़ा अत्याचार है। जबकि जोसेफ के प्रति लोगों का प्यार बढ़ा गया, अन्य लोग उनके विरोध बनते गए। 38 वर्ष के उम्र में 150 आदमियों के गिरोह जिनके चेहरे पे काला रंग था द्वारा उसकी हत्या हो गई। जबकि भविष्यवक्ता को जीवन अचानक खटना हो गया, जोसेफ के खिलाफ भला और बुरा भात गया। प्रभु ने जोसेफ को उसका भाग्य बतलाया था, धरती के कोने कोने के लोग तुम्हारा नाम पूछेंगे और मूर्ख लोग तुम्हारे हंसी उठेंगे और नरक तुम्हारी और तेजी से फैलेगा। जबकि जो हृदय से पवित्र है, बुद्धिमान और धार्मिक लोग तुम्हारे हाथों से आशीर्वाद ढूंढेंगे। प्रभु क्यों अच्छाई और बुराई को एक साथ घटने देता है? एक वजह है कि परमेश्वर के वास्तवों के खिलाफ जाकर सच्चाई की खोज करने वाले अपने घुटने पर होके जवाब ढूंढते हैं। जोसेफ स्मिथ पुरस्थापित का भविष्यवक्ता है। उसका धार्मिक कार्य शुरू हुआ जब पिता और पुत्र उसे देखा, जिसके बाद कई अन्य स्वर्ग के दूत उनसे मिले। वे परमेश्वर के हाथों में साधों बना पवित्र धर्मशास्त्र नजरदास किया और खोया हुआ धार्मिक स्थान और प्रोहिति के सामने लाने के लिए बुद्धिमान से ज्यादा कुछ होना चाहिए या जाने के लिए कि जोसेफ का नाम क्यों आवश्यक था। ऐसे लिए हमें जोसेफ की तरह परमेश्वर से मांगना चाहिए। आत्मिक सवालों के आत्मिक जवाब होते हैं परमेश्वर के द्वारा। कई लोग जो पुनस्थापित के काम में नहीं विश्वास करते हैं, नहीं जान पाते कि स्वर्ग के दूत धरती पर इंसानों से बातें करते हैं। वे कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि सुनने के पते ये देवतूर द्वारा पहुंचे गए और परमेश्वर की शक्ति द्वारा अनुवाद किया जाए गया था। उसे विश्वास ना करने से वह जल्द जोसेफ के गवाही को ठुकराते हैं और दोबारे से कुछ लोग भविष्यवक्ता के जीवन के बदनाम करने की पाप करते हैं और उनके चरित्र को बारे में झूठ बोलते हैं। हम खास करके उदास हो जाते हैं कि जब वे कभी जोसेफ के प्रेम करते थे अपने गवाही से मुकर जाते हैं। एल्डर नीली मैक्सवेल के एक बार कहा था, गिरजाघर के बारे में उन लोगों से सीखना जो गिरजाघर से निकल गए हैं। यीशु ने कहा, अपने भैराव से प्रेम रखो और अपने साथ वालों के लिए प्रार्थना करो। चलो हम ऊपर दया करें जो जोसेफ स्मिथ के आलोचन करते हैं। हम अपने हृदय में जानते हैं कि जोसेफ परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और हम समझते हैं कि वो सब मुरनाई ने पहले बतलाया। हमें उस व्यक्ति को कैसे जवाब देना चाहिए जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के बारे में सुन के पड़े हुए गलत बातें से प्रशंसन है? हम हमेशा स्वागत करते हैं जरूर सच्चाई और सही सवालों को। जब जोसेफ के चरित्र के बारे में सवाल आए, हम उन हजारों लोगों के शब्दों को कहें जिन्होंने उन्हें निजी रूप से जाना थे और उन्हें अपने जान दिया ताकि वे द्वारा स्थापित हुए काम को पूरा। जॉन टेलर, जिसे चार बार गोली मारी गई थी उससे गिरोह के द्वारा जिसने जोसेफ स्मिथ को मारा था, वो बाद में घोषणा किया, मैं गवाही देता हूँ परमेश्वर देवदूतों और मनुष्य के समय कि जोसेफ स्मिथ एक अच्छा अधैर्य धार्मिक व्यक्ति था, कि उसके निजी और सार्वजनिक चरित्र दोष रहित था और वो परमेश्वर की भक्त की तरह जीता और मरता था। हमें उस जांच करने वाले व्यक्ति के याद दिलाना चाहिए कि इंटरनेट पर छापे गरीबों गलत बातें को नहीं पहचे पाते। कुछ जानकारियों पहले कितनी भी विश्वासीय लगे, सच्चाई नहीं है। कई साल पहले एक टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल पढ़ के किसी ने एक पत्र पाया है, शायद मार्टिन हैरिस द्वारा लिखा हुआ, जिसमें जोसेफ स्मिथ ने जैसा कहा मॉर्मन धर्मशास्त्र मिला था उसके खिलाफ था। गिरजाघर के कुछ सदस्य ने एक पत्र के कारण गिरजाघर आना ही छोड़ दिया। अफसोस, वो बहुत जल्द चले गए। महीनों बाद विश्वासियों ने पाया और जल सांस ने बतलाया कि वो पत्र एक धोखा था। तुम जो खबरों में सुनते हो उपसर सवाल कर सकते हो, पर कहीं भी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की गवाही पर संदेह मत करो। हम जांच कर वाले बता सकते हैं कि जोसेफ स्मिथ के बारे में कुछ जानकारी जबकि सच है, शायद किसी अलग तरह की पोश पेश हो जो उसके दिनों के हालातों के देखकर नहीं बतलाया जा सकता है। एल्डर रसल एम नेल्सन के बात से समझ है, उसने कहा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार जब मैं टैक्सी में इंतजार कर रहा था एक बहतवार के बाद ताकि वो मुझे हवाई अड्डा ले जाए, मैं जमीन पर ले गया कुछ धूप लेने के लिए वापस यूटा के ठंडी मौसम में जाने से पिछले। बाद में मुझे धाग द्वारा एक तस्वीर मिला मेरे जब मैंने लेता था जो कोई चित्रकार ने दूर के खिंचकर के एक खास टेलीफोन लेंस वाले कैमरे से। उसके नीचे था एक लिखावट, नेशनल सेंटर के सरकारी चिकित्सक। तस्वीर तो सच था, लिखावट भी सच था, पर सच्चाई का इस्तेमाल किया गया गलत नजरिए पेश करने के लिए। जो हम जानते हैं कि सच है वो हमें नहीं फेंक देता, क्योंकि वो बातें को हम अभी समझते नहीं हैं। मोमन धर्मशास्त्र के गवाही ने लिखा, हम गंभीरता के साथ ये भी सोच कर सकते हैं कि परमेश्वर का एक स्वर्ग ने नीचे आया और हमें उड़े स्वर्ग पुस्तों पर हमें खुड़ी हुई लिपि को अपने आंखों से देखा। एक जांच करने वाले को पुनस्थापित सुसमाचार को बताने के काम को प्रभु के काम के परिमाण के तरह देखना चाहिए जो भविष्यवक्ता के जरिए उत्पन्न हुआ। अभी दुनिया में 29,000 भक्तान के दलन हर और 88,000 प्रचारकों है दुनिया भर में सुसमाचार सिखलाते हैं। लोगों लाखों अंतिम दिनों संत यीशु मसीह के उद्धार कर अनुकर जीना चाहते हैं। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये वर्णन फुसलाने लायक है, पर जांच करने वाले जो सिर्फ उन पर भरोसा करे अपने सच्चाई को खोज को औंद कर सकते हैं। हाल ही में प्रभु पूर्वी तट पर एक मिशन संपाद किया प्रचारक ने मुझसे एक दोस्त के बारे में कहा जो भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के बारे में जानकारी पाकर निराश हो गया था। वो कई बार बात कर चुके थे और प्रचारक के भी मन में संदेह पड़ होने लगा था कि इस बैठक के कारण। मैंने तो सोचा था कि वो अपने दोस्त को मजबूत करेंगे, मुझे उसके अपने गवाही की चिंता हो रही थी। भाइयों और बहनों, मैं तुमसे संदेह न करना चाहता हूँ।
तुम औरों की मदद नहीं कर सकते अगर तुम्हारे अपना विश्वास सुरक्षित नहीं है अपनी जगह पर। कुछ सप्ताह पहले मैं दक्षिण अमेरिका में एक हवाई जहाज पर गया। हवाई जहाज सहायक ने हमारा ध्यान एक सुरक्षा वीडियो को मोड़ा। हमें चेतावनी दी गई थी ऐसा होगा कि नहीं, पर अगर जहाज के प्रेशर बदले तुम्हें सीट पर ऊपर का भाग खुलेगा और ऑक्सीजन मास्क दिखलाएगा। अगर ऐसा हुआ तुम बढ़िए और अपने मास्क को अपनी ओर खींचिए, मास्क को अपने मुंह पे लगाइए, इलास्टिक रस्सी को अपने सिर पर ऊपर पहनने के मास्क ठीक करने, उसके बाद ये चेतावनी, ये निश्चय करके अब तुम्हारे अपने मास्क पहन लिया और किसी और को मदद करने से पहले। जो बुरी हुई थी भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के बारे में बढ़ती रहेगी जैसे जैसे उद्धारकर्ता का दूसरा आगमन नजर देख आता है। वो आधे सच्चाई वाली बातें और चतुर धोखे काम नहीं होगी। कुछ तुम्हारे परिवार और दोस्त होंगे जिनके मदद की जरूरत है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गवाही हम सब के पास अलग अलग ढंग आएगी। वह शायद घुटनों पर प्रार्थना करते समय आएगी, परमेश्वर से पूछते समय कि वो एक सच्चाई भविष्यवक्ता है। वो शायद भविष्यवक्ता के पहले दृष्टि का वर्णन करते समय आएगी। बार बार मोमन धर्मशास्त्र पढ़ने से तुम्हारे हृदय में एक ही गवाही सामने शक्ति आएगी। वो तब आएगा जब तुम भविष्यवक्ता के बारे में अपना गवाही दे रहेगे तो तुम मंदिर में खड़े होगे और ये समझोगे कि जोसेफ स्मिथ के जरिए पवित्र बलिदान की शक्ति धरती पर वापस आई है। विश्वास का सच्चाई अभिलाषा से भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की तुम्हारी गवाही मजबूत होगी। आज जो युवा लोग सुन रहे हैं एक खास चुनौती देता है। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की गवाही खुद हासिल करो। अपने आवाज को मोरनाए की भविष्यवाणी अनुसार भविष्यवक्ता के बारे में अच्छा कहने के लिए इस्तेमाल करो। ये है जो सुनाओ। पहले मोमन धर्मशास्त्र में की सच शास्त्र ढूंढिए जो महसूस करते हैं और जानते हैं कि एकदम सच है। तुम उस पवित्र परिवार के दोस्तों के सत घरेलू शाम को सेमिनरी और अपने जवान पुरुष और जवान महिलाओं के घास को में बतलाओ ये कहते हुए कि जोसेफ परमेश्वर के हाथ में सत्य है। इस बात के जोसेफ स्मिथ की गवाही पढ़ो पेल ऑफ क्राइस्ट प्राइस में इस प्रगत है जो अब 150 भाषाओं में उपलब्ध है। तुम इसे ऑनलाइन पा सकते हो LDS.org में पढ़ सकते हो और प्रचारक के पास। ये जोसेफ के अपने गवाही है जिससे वो वारदात लिखा है। अक्सर पढ़िए जोसेफ स्मिथ के गवाही को अपने आवाज में रिकॉर्ड कीजिए, उसे लगातार सुनिए और दोस्तों को सुनाइए। भविष्यवक्ता के गवाही को अपने की आवाज में सुनिए और तुम्हें सहायता मिलेगा गवाही को बदलने में। आगे चल के बढ़ाई और आंखें एक दिन आएगा। प्रधान थॉमस मॉन्सन ने कहा ये महान कारण आगे बढ़े रहेगा जीवनों को बदलता और आशीर्वाद देते हुए। दुनिया के कोई भी शक्ति परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकता, चाहे जो भी हो। ये महान कार्य आगे बढ़ता रहेगा। मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह है हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता। उन्होंने इस पवित्र मनुष्य को चुना, एक धार्मिक पुरुष जो उनके सुसमाचार के पूर्ण स्थापित कर सकता है। उसने जोसेफ स्मिथ को चुना। मैं गवाही देता हूं कि जोसेफ स्मिथ एक आदरणीय और धार्मिक आदमी थे, प्रभु यीशु मसीह के चेला, पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह उनको दिखे हैं। उसने मोमन धर्मशास्त्र को परमेश्वर से दी गई ऊपर और शक्ति के द्वारा अनुवाद किया। हमारे समाज में मृत्यु के पर्दे के पीछे हम अच्छे तरह समझ जाएंगे। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ की पवित्र नियुक्ति और दिव्य मिशन के बारे में
उस दिन जब अब दूर नहीं है, तुम और मैं और कई लोगों अन्य लोग ब्रदर जोसेफ को दोबारा जानेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Ben Carson ने बतलाया, मैं अपने फिफ्थ कक्षा के सबसे बेकार छात्र था। एक दिन बेन ने 30 सवालों के एक मैथ प्रश्न को लिया। उसके पीछे के छात्र ने उसे सुधारा और वापस दे दिया। शिक्षक मिसेस विलियमसन ने हर बच्चे के नाम के साथ उसका मार्क को बतलाना शुरू किया। अंत में वह बेन तक पहुंचा। शर्मिंदा से साथ उसने जवाब को धीरे और साफ तौर से दिया। मिसेस विलियमसन सोचते हुए कि उसने 9 कहा था, जवाब दिया कि बेन को 30 में से 9 को हासिल करना आश्चर्य का सुधार था। फिर बेन के पीछे के छात्र का चलाया, 9 नहीं, उसका कुछ ही भी नहीं। उसी समय बेन की माँ सोनिया अपने खुद को मुसीबतों के गुजर रही थी। वह उसकी शादी 13 साल में कर दी गई थी। तालाक शुदा थी दो पुत्रों के साथ और उनको डिट्रॉयट बस्ती में पाल रही थी। किसी भी तरह से वह अंतिम निर्भर थी और विश्वास करती कि परमेश्वर उसे के पुत्रों की मदद करेगा। एक दिन उसके और उसके पुत्रों के जीवन में एक ही बुरा समय आया। उसने जीना कि जिन सफल लोगों के घरों को उसके साफ किया था, वहाँ किताब घर थे, वे पढ़ते थे। उसने गुंद से कहा, तुम लड़कों बहुत टीवी देखते हो, आप से तुम सप्ताह में 3 प्रोग्राम दे सकते हो। अपने बच्चे समय में लाइब्रेरी जाना होगा, 2 किताबों को पढ़ोगे। लड़के आश्चर्य में पड़ गया। बेन ने कहा कि उसने सिर्फ स्कूल में जरूरत आने पर की किताब को अपने पूरे जीवन में बढ़ता है। उन्होंने विरोध किया, उन्होंने रोया, बाद विवाद किया, परंतु वे सफल ना हुए। फिर बेन ने सोचा उसने नियम बना दिया था। और कितना महान बदलो हुआ। 7वें कक्षा के वह सबसे अव्वल नंबर को छात्र था। उसने यल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के बाद गया था। फिर जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को 33 की उम्र में वह चीफ की पेडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी बन गया था। यह कैसा मुमकिन था, खासकर के माँ के कारण, जिसने अपने जीवन में बिना की कोई सौभाग्य के अपने माँ होने के नियुक्ति को पूरा किया था। धर्मशास्त्र माता पिताओं को कार्य को बतलाते हैं कि जो उनके कार्यों के कार्य है कि अपने बच्चों को पश्चाताप के सिद्धांत परमेश्वर को जीवित की है कि पूरा यीशु मसीह के विश्वास और बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के ऊपर को सिखलाओ। जब सब बोल दिया जाएगा और संपन्न है, घर ही यीशु मसीह के उस समाचार को सिखलाने का मुख्य स्थान होगा। लगभग 1 साल पहले मुझे लेबनान बेरूत जाने के कार्य प्राप्त हुआ था। जब वहां था, मैंने एक 12 साल के उम्र की लड़की सेरा के बारे में सुना। उसकी माता पिता और 2 बड़े शाहदारों रोमानिया गिरजाघर में परिवारित हुए थे, परंतु फिर उन्हें अपने घर को वापस जाना जरूरी था। जब सेरा फिर सिर्फ 7 साल के उम्र की थी, उनके जन्म भूमि में कोई गिरजाघर नहीं था। कोई भी संगठित यूनिस रविकार स्कूल या जवान महिला कार्यक्रम नहीं। जब आने से पहले 12 साल के उम्र की बड़ी पुत्री सेरा को भेज दिया बड़े साधारणों के साथ बपतिस्मा के लिए, जहां मैंने भक्ति को योजना पर भक्ति का संदेश दिया। सेरा का कई बार अपने हाथ को उठाया और सवालों को जवाब दिया। मीटिंग के बाद उसके बहुत कम गिरजाघर के जानकी के साथ मैं उसके पास गया और पूछा, सेरा तुम किसके तरह उन सवालों के जानते हो? वो तुरंत बोला, मेरे माँ मुझे सिखलाया है। उसकी माँ उसके लिए मुख्य सुसमाचार शिक्षक है, शिक्षक थी। वो इनोस था जिसने कहा, जब जो बातें मैं अपने पिता से आनंद जीवन और संतों के विश्वास में सुना करता था, वो मेरे हृदय में अच्छी तरह परवरिश कर चुकी है। यहाँ कोई संदेह नहीं है। मुझे याद है अपने पिता को चूल्हा के कमरे बैठकर धर्मशास्त्र और दूसरे अच्छे किताबों को पढ़ते हुए, और मैं उसके बगल में बैठे रहते। मुझे याद है उसके जब मैं रहे हुए कांच को, जिसमें धर्मशास्त्र और शेक्सपियर को द्वारा दोहराया था, और वो नए शब्द जो वह जानना सकना चाहता था। मुझे शाम को भोजन के मेज में परस्पर समाचार के सवाल और जवाब भी याद है। मुझे अपनी माँ की याद है। लगभग 90 साल की अपने घर की शादी कर किचन में भोजन पकाते हुए और खाने से भरे ट्रे को लेकर खुश होते हुए मैंने पूछा, अरे मैं कुछ भोजन बुजुर्ग के लिए ले रहा हूँ। मैंने अपने माता पिता को मेरे मुख्य समाचार शिक्षक है कि कितना आभारी हूँ यह बदला नहीं सकता। एक महात्व का कार्य हम माता पिता की तरह कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्रार्थना की शक्ति के बदलाव में। जब मैं 17 साल का था, मैं अपने खाट के पास घुटने पर थे, क्या तुम प्रभु से मदद चाहते हैं कि तुम अच्छे पति ढूंढते? उसके सवाल ने मुझे आश्चर्य नहीं छोड़ दिया। वो मेरे मन के सबसे आखिरी ख्याल था। नहीं, जिसका उसने जवाब दिया, अच्छे तुम्हें चाहिए पुत्र, या तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य होगा, जिन शब्दों में तेरे मेरे हृदय में घर के लिया था। माता पिता की तरह हम अपने बच्चों को आनंद चीजों के परिणाम के लिए हमारे बच्चों को प्रार्थना करना सिखलाना चाहिए, अग्रकार रहें और सच्चाई से खड़े रहें के लिए हिम्मत रखें। कोई संदेह है नहीं कि हमारे युवा शाम की प्रार्थना के करते हो गई, परंतु उनमें से कोई कोशिश करते है सबसे प्रार्थना को करने में। मगर हमें से कौन अपने बच्चों को हर सुबह घर से जाने से पहले करते से भरे दुनिया में शैतान को जलने के लिए और उसके कई बहकावे में आने के लिए उनके धार्मिक कवच और शील्ड और तलवार के बिना भेजेंगे और बचाने वाले शक्ति प्रार्थना से प्राप्त करेंगे। प्रभु ने कहा, हमेशा प्रार्थना करो कि तुम शांति पर विजय प्राप्त कर सके। माता पिता की तरह हम अपने बच्चों को हमेशा सिर्फ की प्रार्थना को करने की आदत को बनाने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी सोनिया कर्शन की तरह हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों के प्रेम से मगर धीरे से उनको टीवी और उनके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शब्दों पर बंदी लगाए, बल्कि हमें उनके समय को ज्यादा लाभदायक समाचार गतिविधियों में लगाए चाहे। या पर शुरुआत में सोनिया कार्सन की तरह हमें समझना चाहिए कि ये आने वाले जीवन में किस तरह का प्रभाव डालेगा। हम सब शायद खुद ही से पूछें, क्या हमारे बच्चे हमारे सबसे अच्छा धार्मिक दिमागी और रचनात्मक शक्तियों को प्राप्त करते हैं? आने वाले जीवन में मुझे पता नहीं है कि या क्या बिशप या सहायक संस्था प्रधान के अशर्क रहेंगे या नहीं, परंतु मुझे पता है कि पति और पत्नी, पिता और माता के शीर्षक रहेंगे और दुनिया के अंत तक इज्जत मिलेगा। यह है वह महा जिम्मेदारी है जो हमें माता पिताओं को यहाँ इस धरती पर जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के उन महान परंतु उससे तरह तरह के जिम्मेदारियों को निभा सकें। हम माता पिताओं की तरह हमारे दिव्य कार्य है और परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी में हमें बच्चों के सुसमाचार और उदाहरण के मुख्य शिक्षक बन सकते हैं। मैं ये यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen.
Thank you, brethren. The choir and
congregation. The choir of the congregation of Gaige, Redeemer of Israel. Sangit ke baad ham Elder Jörg Klemengard aur Eduardo Gavret jo 70 ke hai se sunenge. Elder Gavret apne matra bhasha Spanish mein bhashan denge. Sammelan kendra ke screeno par angrezi unwad diklenge. Unke baad Elder Jeffrey R. Allen jo bara devdutu ke parishat ke hi bhashan denge.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
On a scale of
how
would you rate your spiritual confidence before God? Do you have a personal witness that your current offering is a letter?
एक दूसरे के बीच में आप परमेश्वर के अपने धार्मिक साहस कितना कैसे तुलेंगे? क्या आप अपने आप से पूछेंगे कि पिता परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या बातें मन में आएंगे अगर अभी से एक मिनट में उधारकर्ता के साथ आपका निजी विरता हो जाएगा? क्या पाप निराशा आपको दिखलाएगा? क्या आप उनके आंखों में देखेंगे और या नजरें चुराएंगे? क्या आप दरवाजे पर खड़े होंगे या उसके ओर बढ़ोगे? जब भी शत्रु तुम्हारे जैसे अपूर्ण मगर परिश्रामी संतों को तुम्हारे अपने और प्रेम से भारे परमेश्वर में विश्वास से अलग नहीं कर सकता है, तब वो एक दुष्ट चाल चलता है। परमेश्वर के बीच दूरियां पैदा हो जाता है। शत्रु जानता है कि मसीह में विश्वास, वो विश्वास जो लगातार कोमल दया और प्रभुशाली चमत्कार उत्पन्न करते हैं, एक निजी साहस की तरह है कि तुम सच्ची सही चुने की कोशिश कर रहे हो। इस कारण तुम कि यीशु मसीह का पश्चाताप तुमसे दूर है और कि सब कोई तुमसे आगे बढ़ रहे हैं और कि कोई फायदा नहीं है कि तुम पश्चाताप करो। जब तक तुम आवाज़ों को मौका दोगे, तुम्हारे आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाएगा। तुम सच्ची साहस से परमेश्वर के सिंहासन को नहीं बढ़ पाओगे। तुम जो भी करोगे जिस की भी चीज़ के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर में तुम्हारे विश्वास को ही नहीं पर तुम्हारे साहस खुद में साहस को भी। सुषमाचार को इस तरह से और इसमें तुम्हें सिर्फ बदलना है, सिर्फ तुम्हें। मैं 6 उपयोगी सुझाव बताना चाहता हूँ जिससे अगर पालन किया जाए तो सारे बुरे आवाज़ तुम गुम हो जाएंगे। 1 से 10 के बीच में कि जो भी तुलना तुमने किया है, अब यीशु मसीह के प्रायश्चित को अपनाने से तुम एक बार फिर अपने धार्मिक साहस को आज बढ़ा सकते हो अगर तुम इसका पालन करोगे। पहला, अपने धार्मिक सुख की जिम्मेदारी लीजिए। अन्य लोगों या अपने परिस्थिति को दोष देना बंद करो, सफाई देना बंद कीजिए और वजह निकालना कि आप क्यों आगे कार्य नहीं है उसको भी बंद कीजिए। मानो कि तुम शरीर से स्वतंत्रता हो और स्वतंत्रता हो आनंद जीवन चुनने के लिए। प्रभु तुम्हारे परिस्थितियों को भी भली भांति जानता है, मगर वो भी जानता है कि चुन लेने कि सुषमाचार को पूर्ण रूप से ना दिया जाएगा। धार्मिक साहस बदलता है जब तुम अपने धार्मिक सुख जिम्मेदारी लेते हो और यीशु मसीह का प्रायश्चित हर दिन अपनाते हो। दूसरा, अपने शारीरिक सुख की जिम्मेदारी लीजिए। तुम शरीर और आत्मा के बने हो। अपने आत्मा का पोषण करना और शरीर को ठुकराना, जो कि एक मंदिर है, अक्सर आत्मिक ठुकराव और आत्मा ससमान को उत्पन्न करतेगा। अगर तुम मोटे या पतले हो, अगर तुम अपने शरीर से ना खुश हो तो उसके बारे में कुछ कीजिए। एल्डर रसेल मोशन ने सिखलाया है कि हमें अपने शरीर को एक मंदिर की तरह सोना चाहिए और हमें अपने खाने पीने का ध्यान करना चाहिए कसरत के साथ। प्रधान बोयट के पिकर ने सिखलाया है कि हमारे आत्मा और शरीर इस तरह से जुड़े हैं कि हमारा शरीर हमारे मन का हथियार बन जाता है और हमारे चित्र का बुनियाद। इसलिए समझदारी बातें भरते आप अपने खाने पर और खासकर अपने खाने की मात्रा पर ये जाने कि शरीर की कितना कसरत सहता है। धार्मिक साहस बढ़ जाता है जब तुम्हारा आत्मा उद्धारकर्ता के मदद से पूरी तरह से जिम्मेदारी हो जाता है तुम्हारे स्वाभाविक पुरुष या महिला के। तीसरा, आज्ञाकारी को चुनने, जीवन का भाग बनाने, उसे पूरे हृदय से अपना। ये माने कि तुम परमेश्वर से नहीं प्रेम करते हो, उनके आज्ञाओं को भी प्यार करते हो। उद्धारकर्ता का स्तर साफ और आसान है। यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। थोड़ा आगे कार्य थोड़े ही आशीर्वाद लाते हैं और कुछ बुरा चुनाव बचाए कुछ बहुत बुरा के फिर भी गलत चुनाव कहा जाता है। तुम एक बुरी फिल्म देखकर सुच नहीं महसूस करते हो। अच्छाई को अपनाओ। इसके साथ साथ सही चीजें करने से सही वजहों को के लिए प्रभु जो एक हृदय और एक इच्छापूर्ण मन चाहता है और जो दिल के बातों को जानता है और समझता है, जानता है कि क्यों तुम गिरजाघर जाते हो। क्या तुम सिर्फ वहां जाते हो? याद रखो कि धार्मिक चीजों के हल से की खुशी नहीं प्राप्त होती है। धार्मिक साहस बढ़ता है जब तुम साहस में कोशिश करोगे, चाहे कितनी कमजोरियां हो तुम्हारे। आदम निमुख हो जाए अच्छी तरह और जल्द से पश्चाताप करने में, क्योंकि यीशु मसीह का प्रायश्चित तत्काल होता है। तुम्हें 24 घंटे उसके करते रहना है, क्योंकि उसके आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होते। यीशु मसीह के प्रायश्चित और पश्चाताप से अपने जैसे महान डॉक्टर यीशु मसीह के आदेश पर ही हर दिन तुम दवाएं लेते हो। आदत डाल लो लगाकर खुशी से आनंद के साथ पश्चाताप करने के का, ताकि ये तुम्हारे जीवन गुजरने को चुनौती बन जाए। धार्मिक सहार बढ़ती है अगर जो तुम स्वयं इच्छा और आनंदित होकर। पांचवी, माफ करने में एकदम चतुर हो जाओ। मैं प्रभु उन्हें माफ करूंगा जिसे मैं चाहूंगा, मगर तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम सभी को माफ करो। हर एक इंसान, हर एक चीज को, हर एक समय माफ करना कोशिश करना। दुश्मनी ना रखें, आसानी से बुरा ना मान ले, जल्दी से माफ रखें और भूल जाए और कभी ना सोचने में। धार्मिक साहस बदलता है जब तुम जानते हो कि प्रभु जानता है कि तुम किसी और इंसान से दुश्मनी नहीं चाहते। चौथा, कठिनाइयों, रुकावटों और अचंभव को अपनाने मनशील अनुभव का एक भाग समझें। याद रखिए कि तुम यहाँ सही और नुतपुतय होने के लिए आए हो, ये देखने के लिए कि तुम वो सब करोगे जो प्रभु परमेश्वर तुमसे बतलाएंगे। अब मैं ये भी कहूँगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो, तुम्हारे कई मिलियन मिलाया भाई और बहन परिस्थिति ले चुके हैं और उसे गुजार रहे हैं। कुछ मुसीबतें तुम्हारे अपने अनगणितकारी या लापरवाही का नतीजा होते हैं। इससे नजरदारी कर दिए, बल्कि एक मुस्कान लाए। धार्मिक साहस बदलता है जब तुम ये मान लो कि अक्सर मुसीबतों और कठिनाइयों में ये दिया जाता हूँ। जब मैं मिशन यूक्रेन किया मिशन का आयोजित रहा था, मैंने एक अपने एक सबसे विश्वासी बहन से पूछा कि क्यों वो खुद के लिए इतनी सख्त रहती है, क्योंकि वो खुद जो छोटे होते हैं। भाई और बहने, मेरे ये सलाह है कि तुम्हारे लिए भी है, अपने कमजोरियों को स्वीकार करो, चाहे जो तुम्हारे भी अभी का स्थिति हो। जब भी तुम ईमानदार, खुशहाल, दयनीय पश्चाताप को अपनाओगे, सबसे बेहतर बनकर उधारकर्ता का प्रायश्चित खुद को तुम पर सहमत रहेगा और तुम्हारे साथ चलेगा। इस तरह से जीने से तुम सच में सदैव अपने पापों की क्षमा प्राप्त करोगे। हर दिन का हर एक घंटे, हर मिनट, हर एक क्षण और एक तरह पूरी तरह साफ और परमेश्वर के सामने लायक हमेशा रहोगे। ये तुम्हारा सौभाग्य है अगर तुम चाहो कि खुद के लिए जानो। आज या जल्द है कि तुम अपने कमजोरियों के सहित परमेश्वर को खुश रखते हो। मैं एक प्रेमी उधारकर्ता की गवाही देता हूँ कि जो चाहता है कि तुम आज्ञाकारी हो। मैं एक प्रेमी उधारकर्ता की गवाही देता हूँ कि जो उत्सुक है हम पर अंधेर। मैं एक प्रेमी उधारकर्ता की गवाही देता हूँ जो आनंद मनाता है जब हम उनके प्रायश्चित को अपना हर दिन शांत और खुश आश्वासन के साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं उधारकर्ता की गवाही देता हूँ कि उत्सुक है तुम्हारा साहस परमेश्वर की उत्पत्ति से। यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्योंकि देखो, प्रभु सभी देशों को अपने राष्ट्र और भाषा में अपनी वाणी की शिक्षा लोगों को देता है। आज ये धर्मशास्त्र की पूरी एक बार भी हाल में है जब मुझे अपना एहसास हुआ था। वो 1975 था जब मैं यूरुग्वे पैराग्वे मिशन में एक जवान प्रचारक था। मिशन पर मेरे पहले महीने में जोन के नेताओं के एक गतिविधि रही एक सुसमाचार के सिद्धांत को दिखलाने के लिए जोन के हर प्रचारक के आंखें पर पट्टी बांधे गई।
और हमें बदलाया गया कि हमने एक पहले मार्ग पर चले एक बड़े कामों पे जाए। हमने एक नेता के आवाज़ को सुनकर जो पहले से बतलाया पाया है उसके पास पहुंचना है। हालांकि हमें चेतावनी दी गई थी कि सफ़र के दौरान हमें कई आवाज़ों सुनाई देगी जो हमें उलझनों और गुमराह करने चाहिए हमारे मार्ग से। कुछ मिनटों के आवाज़ों के सुनने बातें करने के बाद ऐसे दोहराया एक आवाज़ जिसे कहा, मेरे पीछे हो लो। मैंने निडर था कि मैं सही आवाज़ को पीछा कर रहा था। जब हम बड़े कमरे तक पहुंचे, नेताओं के हमारे अपने आँखों से की वो 39 सालों पहले का अनुभव मेरे ऊपर लंबे समय का प्रभाव छोड़ गया। मैंने खुद से कहा, कभी भी गलत आवाज़ को नहीं सुनना। फिर मैंने खुद से कहा, हाँ प्रभु, मैं आपके पीछे हो लूँगा। मैं एक अनुभव बतलाता चाहता हूँ उद्धारकर्ता के कोमल निर्मलता को लेकर लिए। अच्छा चेहरा वालों, मैं हूँ और मैं अपनी भेंटों को जानता हूँ, भेड़ों को जानता हूँ। मेरे भेड़े मेरे आवाज़ को सुनते हैं और उन्हें जानते हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। उन्होंने पीछे चलेंगे का निमंत्रण सबसे सरल, सीधा और शक्तिशाली निमंत्रण है जो हम पाते हैं। वो एक सफर आवाज़ आता है जिसे हमें उलझनों नहीं, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि वे इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास आओ, मेरे पीछे ले लो, मेरे साथ चलो। हर एक बार ये सिर्फ कहना बार कि निमंत्रण नहीं होगा, यह कुछ कर देना। ये सभी मनुष्य जाति है, मेरे पास आओ का निमंत्रण। हम सब परिश्रम करने वालों के भोज के देव लोगों के और तुम्हें विश्राम देंगे। तुम में से जो अभी गिरजाघर के सदस्य नहीं है को ये निमंत्रण प्रचारकों के आवाज़ से मिलेगा। क्या तुम मोमन धर्मशास्त्र पढ़ोगे? क्या तुम प्रार्थना करेंगे? क्या तुम गिरजाघर चाहोगे? क्या तुम यीशु मसीह के उद्धार पर चलोगे और अधिकार रखने हुए के आज तुम इस निमंत्रण की कैसे जवाब दोगे? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि संदेश को सुनो और स्वीकारने के लिए ये कहो, हाँ प्रभु, मैं अपने पीछे हो लूँगा। 14 वर्ष के नोमा एक पुरुष को बहकलावे जवाब देने में मदद करने के लिए। नोमा बहुत ही उत्थस हुआ स्कूल विद्यार्थी थी जो इस वर्ष स्कूल में बाइबल अध्ययन कर रही थी। इसलिए जब प्रचारकों ने उसे एक सवाल पूछा, नोमा तुरंत जवाब दे दी। वो एक गोल्डन इन्वेस्टिगेटर था। उसके दिन के पास ज्ञान और सत्य है। जब वो प्रचारों के साथ पाठ करके घर पहुंचे, नोमा जान गई थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं दूध ही पीऊंगा, कॉफी नहीं, सिर्फ दूध देना। उसके निर्णय से उसका इच्छा देख रहा था कि वो मसीह का निमंत्रण स्वीकार करना चाहती थी जो प्रचारक ने उसके पूछा था। दोनों कार्लोस बर्थर और नोमा ने बपतिस्मा लिया। बाद में नोमा के उदाहरण को देखकर उसके माता पिता और भाई बहन भी बपतिस्मा लिया। नोमा और माल एक साथ बड़े हुए और छोटे मगर शक्तिशाली शकाल बड़े में। बाद में जब मैं प्रचार सेवक से वापस लौटा, हमने शादी कर ली। मुझे हमेशा पता था कि उसके अपने साथ रहकर उद्धारकर्ता के पीछे हो लेना आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति के गिरजाघर का सदस्य है और ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है, हर एक सप्ताह प्रतिभोज लेने से इस वादा को फिर से लेता है। इस वादा का थोड़ा भाग की आज्ञाओं का पालन करता ऐसा करने का, हाँ प्रभु, मैं आपके पीछे हो लूँगा, मैं पास आऊँगा। प्रभु का निमंत्रण था धनी युवक के लिए। उस धनी आदमी ने अपने जीवन भर आज्ञा का पालन किया है। जब उसने पूछा, मैं क्या करूँ, उसके साफ निमंत्रण का जवाब था, आओ मेरे पास। हालांकि भले की निमंत्रण सरल था, وہ بنا بلیدان کا نہیں تھا، اس کے لیے محنت چاہیے تھا۔ بھوشوکتا نیفائی نے خود کے بارے میں سوچا جب اس نے سوال کیا، وہ مانو وش کے کہتا ہے تم میرے انوکرن کرو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بنا پتا کے آگیاؤں کا پالن کیے ہم کیا مسیح کا انوکرن کر سکتے ہیں؟ میرے پاس آؤ، اس کی آواز کو سنو اور اوپر اور کر کے نمنترن شروعات سے پرچاروں کو کے سندیش رہا ہے، کئیوں کے مدد کے لیے، آشچریہ کے اپنے لیے۔ 50 سال پہلے پرچارکوں میرے پتا کے بننے والے دکان میں آئے اور گھڑی کے مرمت کرانے کے لیے، جب سے جیسے سب اچھے پرچارک کرتے ہیں، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور میرے پتا اور ماتا سے سوسماچار کے بارے میں بتا دیا۔ میرے پتا نے پرچاروں کو سویکار کیا اور میرے ماتا نے مسیح کے سندیش اور نمترا کو نا، اس نے آج تک وہ گرجا گھر کے سرکاری رہا ہے۔ اس نے کہا، ہاں پربھو، میں آپ کے پیچھے ہو لوں گی۔ جب تم اس کے پاس آنے کی کوشش کرو گے، تمہیں شکتی ملے گی اور جوان کی بھوجوں کو سینا اور دھن سرک اور اندر کے میرے ساتھ چلنے کا نمترن۔ اینک کا کٹھن کھور ہردن والے لوگوں کا پاس سوسماچار پرچارک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ اس کے یوگیہ نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سندیہ ہوا کہ کیا وہ ایسا کر پائے گا۔ پربھو نے اس کے من کے شانت کیا اور اس کے وشواس کو محسوس کیا، میرے ساتھ چلو نمنترن کے ذریعے۔ ایک نمنترن جو ایک اندھے کے لاٹھی یہ ایک دوست کے ہاتھ کو جیسا ہے، کہ ایسے ہم سفر کے سکتا جو نشچے ہوگا۔ اینک نے پایا کہ وہ ساہس ہو گیا تھا کہ اچھا پرچارک اور ایک بھوشوکتا بن گیا۔ میرے پاس آؤ اور میرے پیچھے ہو لو کا نمر نیچ ہے۔ جب ہم کی نمنترن کو نویکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ چل سکتے ہو۔ نوما اور مائل نے ویکتگت روپ سے میرے پاس آؤ اور میرے پیچھے ہو لو کا نمنترن کا سویکار کیا۔ پھر ایک ساتھ ایک دوسرے کا سہارا دیتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ چلنا سیکھ لیا ہے۔ اسے ڈھونڈو اور اس کے پیچھے ہو لینے کیا کوشش اور لگان کے تحفہ ملے گا ضروری آشیرواد کا۔ یہ تھی اس کے مہیلا کے کہانی جو بہت محنت سے ادھارکرتا کے کپڑا چھو پایا تھی اور پھر بھی بدتمیز جو اندھا تھا کی طرح، جس کا اچھا ضروری تھا اس کے جیون میں کھٹا چکر۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، ان نے کپڑے چھو لو، ان کا نمنترن سویکار کرو اور کہو، ہاں پربھو، میں آپ کے پیچھے ہو لوں گا۔ اور اس کے پیچھے ہو لو، میرے پاس آؤ، میرے پیچھے ہو لو، میرے ساتھ چلو۔ نمنترن کے شکتی ادھک ہے آج لوگوں کے لیے جو اس کے سویکار کرتے ہیں، تاکہ تم اپنے اندر کی بلداؤ جو تم سے کہے گا، میں شیطان کے کاریہ کو نہیں کروں گا پر سدیو اچھے کرم ہی کروں گا۔ اسے بدلاؤ کے کارن تمہیں کمزور ہی ہونا۔ ہم آج کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے؟ پہلے اپنے اچھا کو پورے کرو، مسیح کے بہتر چیلا بن کر۔ اس اچھا کے لیے پرارتھنا کرو تاکہ انہیں تمہارا وشواس بڑھے۔ دھرمشاستر سے گیان پاؤ، راستے دلاؤ اور تمہارے بدلاؤ۔ ترنت نرنے لو ایسا کرنے کا اور کہو، ہاں پربھو، میں اپنے پیچھے ہو لوں گا۔ صرف سچائی جاننے تمہاری دنیا میں بتائی جائے گی، تاکہ تم گیان کو کم میں اپنے نرنے میں پرشرمی بنو اور سدھانتوں کو ہر دن کرنے سے۔ ہمارے پریہ بھوشکتا تھامس ایس مانسن کے شبد میں ہمیں ادھارکرتا کے نمرتر کو سیوک میں اور کامے میں اس کے اک سکتے ہیں۔ پردھان مانسن نے کہا، وہ مہیما کے راجا کیا کیوں کہا ہے، یہ پرلاؤ کا پربھو، وہ ہمارے سوامی ہے، وہ ہمارے ادھارکرتا ہے، وہ پرمیشور کا پتر ہے، وہ ہمارے مکتی ہے۔ आओ हम निर्णय बनाएं कि हम अपने भक्ति का दर्जे और परमेश्वर का लगाव को बढ़ाएंगे और तुम शायद उन्हें निम्रता का हमारे जवाब से वो सुनने देंगे। हाँ प्रभु, मैं आपके पीछे होऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के, आमीन।
What a wonderful new element introduced into our general conference.
क्या एक बढ़िया बातें बताई एडवर्डो ने।
In what would be the most startling moment of his early ministry, Jesus stood up in his home.
जो उनके प्रचारक के शुरुआत का आश्चर्यजनक पल होता, यीशु नाजरत के अपने घर के प्रचार स्थान में घटे हुए थे। उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाना के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि टूटे दिलों को चंगा करूं। इन शब्दों को पढ़कर उद्धारकर्ता ने पहला सार्वजनिक घोषणा किया और अपने मसीह प्रचार का, मगर ये वेश से भी स्पष्ट होता है कि उनके आखिरी प्रायश्चित के बलिदान के मार्ग पर और पूर्ण जीवन के समय यीशु का पहला और जरूरी मसीह जिम्मेदारी किया गया था। अपने प्रचार की शुरुआत से यीशु गरीब और मासूम से एक अलग ढंग से प्रेम करते थे। वो उसी तरह के दो लोगों के घर में जन्मा था और वैसा कई लोगों के बीच पड़ा। हम उनके जीवन के सभी सांसारिक तत्व नहीं जानते, मगर उसने एक बार कहा है, लोमड़ियों के घरने में और पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्यों के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं मिला। हम जानते हैं कि स्वर्ग और जगत को और उसमें की सारी वस्तुओं की रखने वाले अपने बुजुर्ग अवस्था में बिना घर के थे। इतिहास भर में गरीबी मानव जाति की सबसे बड़ी और फैली हुई कठिनाई रहती है। गरीबी की परिणाम अक्सर शारीरिक होती है, मगर जो आत्मिक और भौतिक नुकसान उससे पहुंचता है बहुत ही हानिकारक होती है। किसी भी कहानी में उस महान मुक्तिदाता ने लगातार हमें पुकारा है। यहोवा की भूमिका में उसने कहा, वो इज़राइल के घराने के कढ़ाई से जांच करेगा, तुमने लूटकर अपने घरों में रखा है, तुम्हारे क्या मतलब है? उसने कहा कि तुम मेरे प्रजा को पीटोगे और गरीबों के चीजों पर को पीस डालोगे। प्रभु का लेखक इस बात को स्पष्ट करता है, जो अपने पड़ोसी को तू जानता वो पाप करता है और जो कंजव की दुहाई पर कहा ना देता वो खुद पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हमारे दिनों में यीशु मसीह का पुष्नापित गिरजाघर के एक साल के लिए भी अभी पुष्नापित नहीं हुआ था, जब प्रभु ने अपने सदस्यों के कहा, गरीब और जरूरतमंद की परवाह करो। उस वक्त में आज्ञा की आवाज पहुंचे, उन्हें तकलीफ ना हो। ये भाषा परमेश्वर इस्तेमाल करता है जब वो चाहता है कि हम उसे करें। जब दुनिया में ऊंच नीच की कठिनाई हो छोड़ती है कि बात आती है, एक पुरुष क्या कर सकता है? तब परमेश्वर बताता है, उसके भविष्य भगत और क्रूस पर चढ़ते पहले मेरी ने यीशु के सिर पर कीमती चमत्कार का तेल डाला था। जूदास क्रिस्ट ने इस विरुद्ध किया और उसके विरुद्ध कहा। यीशु ने कहा, तुम उसे क्यों सताते हो? उसने तो भलाई की है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया ये एक शक्तिशाली सफाई है। ये रिप्रूपतार ने एक बार कलकत्ता के माता तेरेसा से शहर के गरीबों को بچانے کے آسان آشاہن کام کے بارے میں پوچھا. اس نے سنکھیا کو دیکھ کے کہا اس نے کچھ بھی تو حاصل کیا ہے. اس چھوٹی سی مہیلا نے ترنت جواب دیا کہ اس کا کام پیار سے بھرے میں تھا. ہم جو بھی جو پاتے ہیں شاید ساگر میں صرف ایک بھول سکتے ہیں, اس نے کبھی کہا, پر اگر ہم وہ نہ کریں تب ساگر میں ایک بوند کم ہوگا. اس نے کیا طے کیا کہ اگر سورگ میں زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک پتی کو لے کر پاپی کو لے کر جو پشتپاپ کرتا ہے انہیں نبھانے میں معلوم کرتا ہے, پرمیشور پشتاتوں کی پرواہ نہیں کرتا. ایک بات کے لیے جسے راجا بنجامن نے سکھلایا تھا, ہم اس کارن سے اپنے سدھانوں کو دبا کر نہ رکھے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ غریبوں سے اپنا دکھ خود اپنے اوپر لایا ہے. شاید کچھ لوگوں کی کٹھنائیوں انہیں کے کارن آئی ہے, پر کیا باقی لوگ وہی نہیں کرتے؟ کیا یہی وہ وجہ نہیں ہے کہ یہ دیالو راجا پوچھتا ہے, کیا ہم سبھی بھکاری نہیں ہیں؟ کیا ہم سب مدد اور آشا اور پرارتھناؤں کے جواب کے لیے نہیں پکارتے؟ کیا ہم سب اپنے غلطیوں اور ہمارے ذریعے اتپن ہوئے مصیبتوں کے لیے معافی کی بھیک نہیں مانگتے؟ کیا ہم کرپا کی بھیک کی آلوچنا نہیں کرتے کمزوریوں کو چھپنے کے لیے کہ دیا نیائے کے اوپر وجے ہوگا ہمارے استھتی کو لے کر؟ یہ آشچرجنک نہیں ہے. راجا بنجامن کہتا ہے پاپوں سے کھما پاتے ہے پرمیشور سے ونتی کرتے کر کے بند جو دیا سے اتر دیتا ہے, مگر ہم اپنے پاپوں کے کھما ہونے کو روک دیتے ہیں جب ہم غریبوں کی ونتی نہیں سنتے. دیا کے ساتھ دن لوگوں کی سہایتا کرنے کے ساتھ ہمیں ان ضرورت مند کے لیے بھی پرارتھنا کرنا چاہیے. زرمائٹیوں کا ایک دل جن کے دھرم کے گھنٹے اور بیکار جمتے تھے سمجھتے تھے کو ان کے پرارتھنا گھروں سے باہر بھیجا گیا کیونکہ ان کا پہناوا گھٹیا تھا. مارمر کہتا ہے سانسارک سماپتی کی ان کے پاس بہت ہی کم وستویں تھیں اور ہردے سے بھی دو ستھتیوں جو لگ بھگ ہمیشہ ساتھ آتی ہے. الما اور املک جو ایک ساتھ پرچار کرتے تھے نے ان غلطیوں پوشک سے لوگوں کو ہٹ میں بانٹے اور ان سے بتلایا کہ وہ ہمیشہ اپنے کھیتوں اپنے گھروں اپنے پریوار اور اپنے ہردیوں میں پرارتھنا کر سکتے ہیں. پر پھر اس دھل سے جنہیں خود ٹھکرایا گیا تھا سے املک نے کہا ہے پرارتھنا کرنے کے بعد اگر تم نے کسی دن اور ننگے کو ٹھکرایا اور بیمار اور دکھی کو نہ بھیٹ کیا اور اپنے سمتی میں تمہارے پاس ہوتے ہوئے ضرورت مند نہیں نہ دیا, میں تم سے کہتا ہوں تمہارا پرارتھنا ویرتھ ہو جائے گا اور تمہارے لیے کوئی لابھ نہیں ہوگا اور تم اسی پرکار دھونی ہوں گے جیسے کہ اویسری ہوتا ہے. یہ ہمیں سکھلاتی ہے کہ یاد دلاتا ہے چاہے ہم دھنوان ہو یا غریب ہمیں جو بھی ہم کر سکتے کرنا چاہیے ضرورت مند کے لیے. اب مجھے دوشی نہ ٹھہرانا چاہیے جیسے میں نے راستے پر بھیک مانگنے والے کی انچت کرایہ کرتا ہے, اس لیے میں اس کو اوشیہ دیتا ہوں میں بھی لوگوں کی طرح منت کم خرچی آتما نربھرتا اور ابھیلاشا کے سدھانت کو مضبوط سے ساتھ دیتے ہونا جیسے کوئی اور جیوت ویکتی دیتا ہے. ہمیشہ ہم سے آشا کی جاتی ہے کہ ہم کسی کی مدد مانگے جو پہلے خود اپنا مدد کرے. اس کے علاوہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کیسے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے ان لوگوں کے لے کر جو کبھی खुद की मदद नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, मगर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर जानता है और वो तुम्हें चेलापन के दयालु क्रियाओं में मार्गदर्शन देगा और तुम लगातार चाहते हो और विनती करते उसके दिए किसी नियम को पूरा करने के तरीके ढूंढते हो जो उन्होंने हमें दिया है। तुम यहाँ समझते हो कि मैं समझ के कठिन ज़रूरतों के बारे में बातें कर रहा हूँ जो सिर्फ गिरजाघर सदस्यों पर नहीं लागू होते हैं। सौभाग्य से प्रभु का तरीका अपनानों को सहायता देने और अभी आसान है, वो सब जो शारीरिक रूप से चंगा हो। क्या यो उपवास नहीं जो मैंने चुना है? क्या वो नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और आनंद और मारे फिरते हैं, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, दुखी लोगों को छुड़ा लेना? मैं उन चमत्कारों की गवाही देता हूँ दोनों धार्मिक और संस्कारी जो उन्हें मिलता है जो उपवास के नियम को जीते हैं। मैं उन चमत्कारों की गवाही देता हूँ जो मेरे साथ घटते हैं। सच में जैसे इसाया ने लिखा, मैंने अपने उपवास में पुकारा और सच में परमेश्वर ने जवाब दिया है। मैं यहाँ हूँ। इस पवित्र सौभाग्य को कम से कम हर महीने जो आजमाओ और अपने उपवास भेंट में जितना हो सके उतना धनशील रखो और अन्य ह्यूमैनिटेरियन शिक्षा संबंधी और प्रचारक दानों में। मैं वादा करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे साथ धनशील रहेगा और जो लोग तुम्हारे हाथों से सहायता प्राप्त करेंगे तुम्हारे नाम को सदा धन्य कहेंगे। गिरजाघर के 750,000 से ज़्यादा सदस्य को पिछले साल उपवास भेंटों से सहायता मिली है जो सेवनशेट बिशप और सहायक संस्था प्रधान के द्वारा दिया गया था। इससे तो कितने सारे आभारी अंतिम दिन संत हुए। भाई और बहनों, इस तरह के भाषण में मुझे मेरे जीवन के नाम कमाए अयोग्य को खत्म होने वाले आशीर्वाद को याद करना चाहिए। दोनों संसारिक और धार्मिक, तुम्हारी तरह मुझे पैसे की चिंता होती है थी समय समय पर मगर मैं कभी गरीब नहीं था। ना तो मैं जानता हूँ कि गरीब कैसे महसूस करते हैं। इसके अलावा मैं सभी कारण नहीं जानता कि क्यों जन्म, स्वस्थ, पढ़ाई और आर्थिक मौके मरणशीलता में इतने अलग है, मगर जब मैं सैकड़ों लोगों की मांगों को देखता हूँ, मैं ये नहीं जानता कि अगर परमेश्वर का कृपा नहीं होता मुझे क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपने भाई का रखवाला नहीं, मैं अपने भाइयों का भाई हूँ और क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिया गया है मुझे भी देना चाहिए। इस बात को लेकर मैं प्रधान थॉमस इस मोशन को खुद समर्थित करता हूँ। मुझे इस मनुष्य को 47 वर्षों से जानने का आशीर्वाद मिला है और मरते दम तक मैं उसका एक रूप हमेशा याद रखूँगा। जब वो आर्थिक रूप से युष्टा हुआ पूर्व जर्मनी से लौटता था घर में पहनने वाले जूते पहनकर, क्योंकि उसने सिर्फ अपना दूसरा सूट और अन्य शर्ट ही नहीं पर के जूते भी दान कर दिए थे। कितने सुंदर हैं पहाड़ों पर हवाएं से गुजरने वाले उनके पैर जो अच्छे समाचार और शांति लाता है। प्रधान मोनसन ने हमेशा वही किया जो वो कर सकता है, किसी और से ज़्यादा मैंने महसूस किया है। प्रधान मोनसन ने विधवाओं और बिना पिता के बच्चों के लिए और जो अब तक कहा है। 1831 के एक प्रतिकरण में प्रभु ने जोसेफ स्मिथ से कहा कि गरीब एक दिन परमेश्वर का राज्य को उनके पास आता देखेगा शक्ति और महान महिमा के साथ। मैं आशा करता हूँ कि हम भी भविष्यवाणी को पूरा करने में मदद करेंगे अपने सच्चे यीशु मसीह के गिरजाघर के सदस्य की शक्ति और महिमा में। वो करें जो हमसे गरीबी के बंदियों को छुटकारा दिलाने और उसके सपनों को नष्ट होने से बचाने के लिए। मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह के कृपालु नाम से, आमीन।
हम हमारी है उन सभी के लिए जिन्होंने आज शाम भाषण दिया और सुंदर संगीत प्रदान किया। हम भाइयों को याद दिलाते हैं कि महापुरोहिती सभा संचालन केंद्र में आज शाम 6 बजे माउंटेन डेलाइट टाइम के समय संपन्न होगा। इस देश का मोमेंट टैबरनेकल गायक मंडली प्रसारण कल सुबह होगा 9:30 से 10 AM तक माउंटेन डेलाइट टाइम। सम्मेलन का रविवार सुबह का उसके तुरंत बाद समापन होगा। हमारे इस सभा के आखिरी भाषणकर्ता होंगे एल्डर एल टॉम पेरी, जो 12 देवदूतों के परिषद का है। उनके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली इस सभा के समाप्त करेगी अबाइड विथ मी टिस इवेंटाइड गाकर। अंतिम प्रार्थना एल्डर एडवर्ड डुबे, जो 70 के है, द्वारा दिया जाएगी।
Our journey through life
has... हमारे जीवन की यात्रा में अच्छा और बुरे दोनों तरह की समय होते हैं। हर एक में अलग अलग चेतावनियों होती है। हम किस तरह से सीखते हैं कि इन बदलों में जीने हमारा खुद है। हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता का सुसमाचार एक सुरक्षित और दोष बुनियाद प्रार्थना करता है। ये एक एक करके निर्माण होता है जब हम प्रभु के आनंद योजना को ज्ञान पाते हैं और उसके बच्चों के लिए। उद्धारकर्ता स्वामी सुरक्षा है, हमारे वो ही तरह जीते हैं। धर्मशास्त्र उनकी गवाही देता है और हमारे लिए संपूर्ण धार्मिकता है। उदाहरण प्रदान करते हैं ताकि हम उन्हें कर सकते हैं। मैंने पहले इस सम्मेलन में गिरजाघर के सदस्यों को बतलाया है कि मेरे पास कुछ छोटे किताब है जिसमें मेरे माँ ने लिखटों को की है सेवक संस्था के। ये एक लिखावट पहले के जैसा आज भी लगभग है। इसमें एक 1908 में चार्ल्स एडवर्ड जेफरस द्वारा लिखा धराना है यीशु मसीह के चित्र के बारे में। इसमें लिखा है ईसाई होने के मतलब है यीशु की इतनी सच्चाई और उत्साह से सराहना करो और हम अपने पूरे जीवन उन्हें दे कोशिश कर सकते। हम शायद उन्हें गवाही प्राप्त करेंगे। मैं कहूँ शब्दों किया कामों और उनकी उन्हें शब्दों के द्वारा है। हम उसके प्रभाव से जानते हैं। 20वीं सदी के जीवन के एक व्यस्तता है बेचैनी। दुनिया किसी चीज के लिए रो रही है पर वो नहीं जानते वो क्या है। पैसा आ गया है। दुनिया में मनुष्य के गुण और ज्ञान से बन आवश्यक बातें है पर हम बच्चे अनस्तुत है खबरों हुए है। अगर हम नियम खोलेंगे हमें ये शब्द सबसे पहले मिले। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, तुम समर्पण पाओगे तुम्हारे मन आदर आगे पुरुष और महिला कुछ हद तक जिन्हें साथ रहने हो चुके हैं वो तरह के जानते हैं, वो जिनका अंदर करते हैं और उनकी नकल भी करना चाहते हैं उनके प्रवृत्त करते हैं। यीशु ही महान उदाहरण है, गहरे शांति पाने के एक हो रास्ता है, परमेश्वर की ओर देखकर जीवित रहो। यीशु के बारे में क्या हमारे अंधे के लिए सबसे जरूरी है? नई नियम के लेखक यीशु के खेद उन्होंने कपड़े या उनके घरों के वो रहते था कि परवाह नहीं किया, वो एक चरनी में पैदा हुआ, एक कपेंटर के दुकान में काम किया, 3 साल तक पढ़ाया और फिर क्रूस पर मर गया। नया नियम ऐसा लोगों द्वारा लिखा गया था जो चाहते थे कि हम अपने ध्यान ऊपर धारे और आश्वान के साथ वो सच के परमेश्वर के पुत्र की ओर है, दुनिया का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता। मुझे विश्वास है उद्धारकर्ता एक निकटता था, खासकर हमारे आज के दिनों के साथ। मैथ्यू अध्याय 13 में कहते, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर घेरे के बीच जंगली बीज बोकर और चला गया। जब सूट निकले तो पहले लग रही थी कि जंगली दए के पड़ों भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थी के दशा ने अक्सर उसे, हे स्वामी क्या तुम अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, फिर जंगली धने के पौधे उसमें कहाँ से आया? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु के काम है। धन धर्षु के उसने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम वो करें? उसने कहा, नहीं ऐसा ना होगी, जंगली धने की पाड़ो पाते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उकलत लो, कटनी तक दोनों के एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय में कटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दालों के पौधे बटोरो कर जलाने के लिए उनका काटरे बांध लो और गेहूं को मेरे अनुराग में इकट्ठा करो। मनुष्य के पूर्व दुश्मन के कई संदेह पाई है जिससे वो जंगली धनों को दूर दूर तक पाए गए। वो टीवी और इंटरनेट के तारों द्वारा आते हैं जिससे हमारे शिक्षा और मनोरंजन के लिए बनाया है। जंगली दालों और गेहूं करीब आ गए हैं। जो व्यक्ति खेत के लिए जिम्मेदार है अपने पूरी शक्ति से, वो ही अच्छा है और पोषण करने की है। हम प्रभु के गिरजाघर के सदस्य कितने धन्य हैं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के अनमोल सुसमाचार अपने बुनियाद की तरह रहने के लिए जिस पर हम अपना जीवन बनाते हैं। मोमन धर्मशास्त्र में से 2 नेफे में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि अगर तुम सही रास्ते से अंदर प्रवेश करोगे और पवित्र आत्मा गर्म करोगे तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। हमें कभी संसार के शोर से उस शांत धीमी आवाज को डूबने और दबा नहीं खोना देना चाहिए। हमें तो पहले से चेतावनी मिल गई है कि हम घटनाओं के जो हमारे दिनों में घटती है, हमारे चेतावनी रहेगा हमेशा कैसा प्रभु की बदलाई बाकी की घटनाओं के लिए तैयारी करने से। कई लोग हमारे चिंतित समाज में समझते हैं कि परिवार का भाग होना सिर्फ दुख और निराशा होगा एक परेशान दुनिया में। गिरजाघर के सदस्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि परिवार को संभालना और सुरक्षित रखना, समाज और अनंतता का मूल अंग बनना। भविष्यवक्ताओं ने बार बार चेतावनी दी है परिवार के अनिवार्य और हानिकारक परिणामों के बारे में। जब परिवार के मूल्य काम हो जाएंगे। दुनिया हमें देखती रहेगी और हमें ये देखना है कि हमारा उदाहरण प्रभु के राज्य योजना के बने रक्षा और सहारा देना है और मरणशलन के उनके बच्चों के लिए सबसे बढ़िया शिक्षा साक्षी उदाहरण है दिया जाता है। हमारे घर पवित्र स्थान होना चाहिए दुनिया के प्रभाव के झेलने के लिए। याद रखिए कि प्रभु के बढ़िया आशीर्वाद सच्चाई परिवार के द्वारा मिलते और दिया जाते हैं। हमें अपने माता पिता होने के भूमिका को लगातार चुनना चाहिए। एक बच्चे का सबसे शक्तिशाली शिक्षा उनके परिवार करने वाले और सच्चे पिताओं और माताओं से मिलता है। आओ हम पहले माता का भूमिका को देखें। प्रधान गॉर्डन बी हिंकली के दुष दौरान को सुनिए। वे महिलाओं जो एक घर के स्वर्ग बनती है समझ के लिए उनका योगदान उनसे बड़ा होता है भरी सेना के अगुवाई करते हैं या किसी बड़े वैश्यक के मुख्य होता है। कोई मूल्य नहीं दिया जा सकता कि है उसके बच्चों पर प्रभाव का। एक नानी आजी का उनके पीढ़ियों पर, ये मुसियों और बहनों का उनके अन्य रिश्तेदारों से। हम महिलाओं के प्रभाव के नाप ये अंदाजा नहीं कर सकते जो कि अपने एक तरीकों के स्थिर परिक्रमित जीवन बनाती है और भविष्य की पीढ़ी को आनंद अच्छाई के लिए पोषण करती है। जो निर्णय के पीढ़ी के महिलाओं बनाती है वो अनंतता तक प्रभावित करेंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आज की माताओं को मौका और चेतावनी मिला है कि वो सब करने का जिससे वे घर को मजबूत कर सकें। आओ हम हमारे जीवन में पिता का भूमिका को देखें। पिताओं आशीर्वाद दे और पवित्र धर्मस्थानियों को बच्चों के लिए पूरा करते हैं ये उनके जीवन के धार्मिक मुश्कियों बन जाएंगे। पिताओं को खुद परिवार प्रशासन देख धर्मशास्त्र आदेशन और संस्थायिक घरेलू साम सभावनाओं में शामिल रहते हैं। पिताओं परिवार के परमश्रम बनाते हैं घूमने के लिए योजना बनाकर जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल रहते। इस स्थान बिता खास शाम समय के यादें बच्चे कभी नहीं है। पिताओं अपने बच्चे के एक एक करके भेंट करते हैं और उन्हें सुसमाचार के सिद्धांत सिखाते। पिता बेटों और बेटियों को काम के मूल्य सिखलाता है और उन्हें अपने जीवन में जरूरी लक्ष्य बनाने में मदद करते हैं। पिताओं विश्वास समाचार सेवा का उदाहर दिखलाता है। कृपया याद रखें भाइयों, तुम्हारे इज़राइल में पिता होने का पवित्र नियुक्ति तुम्हारा मरणशीलता और आनंदता के सबसे जरूरी नियुक्त है। एक ऐसा नियुक्ति है जिसे तुम कभी नियुक्त नहीं हो सकते। कई साल पहले स्टेक सम्मेलन में हम एक फिल्म दिखाया करते थे ताकि हमारा मुख्य संदेश आसान हो समझा जा सके। ये साल में गिरजाघर के स्टेक सम्मेलन द्वारा में यात्रा कर सकते हैं। हम उस फिल्म में क्या हमको अच्छी तरह जान सकते हैं वो संदेश क्या सालों में अब भी मेरे मन में है। फिल्म में आवास प्रधान हेरल बीली का था और उनसे अपने बेटी का घर में हुए घटना का बतलाया था। वो ऐसा कुछ था। इस शाम उस घर के माता जल्दी जल्दी कुछ फल बदली में भर रही थी ताकि काम खत्म हो सके। अंत में बच्चे सो गए थे और सब कुछ शांत हो गया था। अब वो फल का काम खत्म करने गई। तब वो फल होश चलने छीलने का और बीज निकाल लगी। दो छोटे बेटे रसोई में आए और कहा कि वो अपने सोने जाने वाले प्रार्थना के लिए तैयार हैं। वे काम रोक नहीं सकती थी। माता ने बेताओं से जल्दी कहा, क्या नहीं तुम आज रात की प्रार्थना खुद कह सकते हो? माँ फल की काम करती रहेगी। दोनों में से बड़े बेटे ने अपना पैर थोका और कहा, क्या ज्यादा जरूरी है प्रार्थना या फल? कभी कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जब हमारे पास मौका होता है एक बच्चे के है कि जैसे कि हम जीवन में आनंद सफर पड़े। हाँ, हम प्रार्थनाओं फल से ज्यादा जरूरी है। एक सफल पिता ने माता को कभी उठाना वस्तु नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ ये शिक्षलाने का पाल नहीं बाते हैं। ये मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे इतने सालों में कोई भी ऐसा समय नहीं था जब हमारे स्वर्ग पिता के बच्चों को अभी से ज्यादा माता पिता की विश्वासी शक्ति महर मार्गदर्शन हाथ से जरूरत है। हमें अपने ही अंदर उस तरह के लगाव से आत्मा को पाना है और सब चेतावनियों का सामना करना है और बलिदान के उसी आत्मा के साथ हमें भविष्य के पीढ़ियों में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के शिक्षाओं पर ज्यादा निर्भर होना सिखलाना है। और अब मेरे बेटा, याद रखो कि तुम्हें अपने मुक्तिदाता जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है उसकी चेतावनी पर अपनी नींव को बनाना है, जिससे कि जब शैतान की अपनी प्रबल हवा की झोंकों को आएगा भवंडर के द्वारे को अपने सभी ओलों और विशान अंधियों धपने को तुम्हारे ऊपर भेजेगा, तब उसके पास वो शक्ति ना होगी जो तुम्हें खींच कर संतपों और अंत धुखों की में फेंक देगा। चट्टान पर तुम अपनी नींव डाली थी वो निश्चय है, और पर उसके लोगों ने अपने मकान बनाया था, उनकी कपड़े गिर नहीं सकती। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है जो इस नींव प्रदान करता है, जिस पर हम गहरी शांति और आनंद परिवर्तन बना सकते हैं। इसकी मैं गवाही देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
Our dear Father in heaven,
we come before thee.
हम आपके सामने आते हैं इस समाप्ति में कॉन्फ्रेंस का आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर हृदय से जो शब्द हमने सुने हैं आपके चेलों से
हम
आपको धन्यवाद देते हैं इस आपके सुसमाचार के लिए जो आपने फिर लाया है और जो हमारे भविष्यवक्ता है अभी इस दुनिया में जितने भी सभी भविष्यवक्ता है हमारे इस दिनों में हम आभारी हैं हमारे भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन के लिए और हम आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें कि वो चंगे रहे और उनके साथ जो कार्य करते हैं कि जैसे वे हमें रास्ता दिखलाए आपके राज्य के बारे में हम आपसे आशा करते हैं कि हमने जो सब शब्द सुने हैं और जो हम सुनेंगे आगे कि हमें वो सहायता देगा और मजबूत बनाएगा यीशु मसीह की बयान के विषय में कि हम माता पिता अच्छे माता पिता बने और बच्चे रहे अपने परिवारों में यीशु मसीह के नाम से आमीन
This has been a broadcast of the 184th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a choir comprised of members residing in the Grantsville, Stansbury Park, and Tooele, Utah areas. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.